ओम शांति। एक सूफी संत कभी किसी मस्जिद में ध्यान लगाकर बैठा था और अचानक एक चिड़िया खिड़की से उस मस्जिद के अंदर आ गई। उस चिड़िया की आवाज से उस सूफी फकीर का ध्यान टूटा। वो उस चिड़िया को देखने लगा। वो चिड़िया जो थी बेचैन होने लगी थी, टकराने लगी थी दीवारों से, छत से, दरवाजों से, क्योंकि उसे बाहर भी निकलना था परंतु रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। और वो सूफी संत आश्चर्यचकित होता है यह देखकर कि ये चिड़िया हर जगह से निकलने का प्रयत्न कर रही है परंतु जिस खिड़की से ये अंदर आई उसको छोड़कर दीवारों से टकरा रही है, छत से टकरा रही है, दरवाजा जो बंद है उस बंद दरवाजे से टकरा रही है, बेचैन है, घबराई हुई से है। उसके मन में आया कि कोई उसे समझा दे, उस चिड़िया को, कि जहां से तू बाहर आई अंदर आई है वहीं से तुझे बाहर जाना है। परंतु चिड़िया को कौन समझाता। चिड़िया उस मस्जिद में चिल्लाने लगी, कर्कश ध्वनि गूंजने लगी। उस सूफी संत बाईजीत को लगा कि इसे सहायता पहुंचाई जाए, इसे बताया जाए कि जिस खिड़की से तुम अंदर आई हो वही खिड़की बाहर जाने का भी रास्ता है। परंतु शायद चिड़िया को लगा होगा कि जिस खिड़की से मैं अंदर आई वही बाहर जाने का रास्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां आकर तो मैं फंस गई हूं। और जब वो सूफी संत उसकी सहायता करने का प्रयत्न करता है तो वो चिड़िया और ही बेचैन होती है। उसको लगता है कहीं ये मुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है, मुझे शायद और ही बंदी बना दे। और वो और घबराती है और जोर जोर से दरवाजे से टकराती है और जोर जोर से छत से, दीवारों से, और चिल्लाती है, टकराती है और चिल्लाती है। उस सूफी संत ने उस रात अपनी किताब में लिखा, मनुष्य भी ऐसा ही कुछ है, वो भी संसार में आता है, दुख का जो द्वार है, जिस द्वार से वो प्रवेश करता है, जिस खिड़की से वो इस संसार में प्रवेश करता है, इस दुख के संसार में प्रवेश करता है, या अपने जीवन के दुख के संसार में प्रविष्ट होता है, वहां आने के बाद वो हर प्रयत्न करता है उस दुख से मुक्त होने का, परंतु उस खिड़की को छोड़कर वो हर कारण को ठीक करना चाहता है परंतु उस कारण को ठीक नहीं कर पाता जिस कारण से वो दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। संपूर्ण मानवता जो कि आज अशांत है, किसी भी हृदय में, किसी भी घर में, राष्ट्र में, समाज में शांति नहीं है। शांति कहां खो गई है, शायद जिस कारण से शांति खो गई है उस कारण को ही नहीं जानता और बाकी सारे कारणों को वो ठीक करना चाहता है। इसलिए यह अशांति बनी ही रहती है और यह अनुभूति जब उसको हो जाए कि जिस मार्ग से हम अंदर आए हैं शायद वही मार्ग बाहर भी जा सकता है, जिस कारण से जीवन में दुख आया है जब तक उस कारण को ठीक ना किया जाए तब तक उस दुख के घर से हम बाहर भी नहीं निकल सकते, शायद वही मार्ग है दिशा को बदलने की आवश्यकता है। विकारों के लिए भी बाबा ने यही कहा है, शायद वो एकमात्र ऐसी मुरली है अव्यक्त वाणियों के इतिहास में 26 दिसंबर 1979 अव्यक्त मुरली जिसमें बाबा ने कहा है इन विकारों का रूप बदल दो, काम जो है उसको बंदी बनाकर नहीं रखो। जब किसी राजा को बंदी बनाया जाता है तो हो सकता है वो बदला ले, रूपांतरित कर दो, परिवर्तन ही कर दो, रूप ही बदल दो, दिशा ही बदल दो, जो काम है वो शुभ भाव और शुभ कामना बन जाए, जो क्रोध की अग्नि है वो योग की अग्नि बन जाए, जो लोभ है उस लोभ की यदि दिशा बदल दी जाए तो ईश्वरीय खजाने तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। वह आसक्ति उसे प्रेम में रूपांतरित कर दो, वह अहंकार उसे स्वमान में बदल दो, सहयोगी बना दो। कल की अव्यक्त वाणी पर चर्चा करेंगे अनुभूति। बाबा ने कहा तुमने विश्व शांति महोत्सव सम्मेलन कॉन्फ्रेंस की 9 फरवरी से 14 फरवरी तक चली, 9 से 14 फरवरी तक 1983 बाबा आए 15 तारीख को, उसमें लगभग 21 सत्र हुए थे अलग अलग। बाबा ने कहा तुमने भाषण बहुत किए, बाबा तुम्हें सभी भाषणों का सार बताते हैं और वो सार है एक शब्द, कौन सा? रियलाइजेशन, अनुभूति। सर्वोच्च सत्ता कहा है हमेशा बाबा ने अनुभूति को, अनुभव करना, वह संवेदनशीलता जिसमें आ जाए वह अनुभव कर सकता है। रियलाइजेशन के 3 तल बाबा ने बताए, 3 प्लेटफॉर्म्स। आज संसार में अशांति है, किसे ये नहीं पता कि ये अशांति आई कहां से, कौन सी वो खिड़की है। पहला तल रियलाइजेशन का, मानव का महत्व, मनुष्य जीवन का महत्व, यदि ये भी समझ जाए किसी को तो संसार से जितने झगड़े हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल मानव का क्या महत्व है, मानव जीवन का महत्व, लड़ाइया और लड़ाइया। इस कॉन्फ्रेंस में बाबा डॉक्टर रॉबर्ट मूलर से मिले, अद्भुत व्यक्तित्व था ये। ये ऐसा एक पुरुष था, व्यक्ति था कि जिसके जीवन की एकमात्र अभिप्सा, एकमात्र ऑप्शन रिलैक्सेशन जो था वो शांति थी, केवल शांति उसके जीवन में दिखाया है जब छोटा सा बच्चा था। वो इतनी क्रूरता उसने देखी थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वो जन्म लिया उसने, और बचपन से ही युद्ध, इतने युद्ध, और कभी तो युवावस्था में उसको भी एक बार कैदी बनाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके सामने ही कई सारे जर्मन सोल्जर्स को पकड़ा गया और उसके सामने उन्हें जिंदा जलाया गया। इस दृश्य को भी उसने देखा अपनी आंखों से, और तब से उसने मन में संकल्प कर लिया था कि मेरा जीवन केवल और केवल विश्व शांति के लिए है, यही मेरा स्वप्न है। बाबा ने इस मुरली में उनसे कहा कि आपका स्वप्न पूरा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इन आंखों से देखोगे कि सारे विश्व में विश्व शांति का ध्वज फहराएगा। युवा में कभी ट्रेन में सफर करते हुए यह युवक एक अखबार पढ़ता है और जिसमें देखता है कि एक ऐसे कंपटीशन है, और वो ट्रेन में ही एक ऐसे लिखता है और सबमिट करता है और ऐसे में प्रथम आता है, और उसका पुरस्कार ये होता है कि उसकी इंटर्नशिप अभी जो बना हुआ यूनाइटेड नेशंस है उसमें इंटर्नशिप करने को मिलेगी कुछ समय कार्य। और तब से उसके जीवन का प्रवास चालू होता है। 40 साल तक वो यूनाइटेड नेशन में था, अभी 2010 में उसने शरीर छोड़ा। उसकी पत्नी उससे हमेशा पूछती थी कि तुम इतने सारी किताबें लिखते हो, ये शांति और खुशी पर क्यों लिखते हो, यूनाइटेड नेशन पर कविता क्यों नहीं लिखते, तुम तो उसमें काम करते हो। वो कहता था, यूनाइटेड नेशन इज नॉट माय ऑब्सेशन, पीस इज माय ऑब्सेशन। सम्मोहन कर रखा है, जैसे एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, क्योंकि बचपन में जीवन में इतनी अशांति, इतने युद्ध उसने देखे, ऐसी दुर्दशा देखी वार के बंद कैदियों की, कि तब से जीवन का एकमात्र उसने लक्ष्य बनाया था पीस, पीस, पीस। बाबा ने कहा रियलाइजेशन का पहला तल है मनुष्य जीवन, मानव जीवन। एक तो ये युद्ध, और दूसरा है जिसको बाबा कहते हैं जीवघात, संसार उसे आत्महत्या कहता है। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है, 2012 का एक स्टैटिस्टिक है जो कहता है कि हर वर्ष 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं विश्व भर में, उसमें से 1,25,35,000 भारत में है, 17%। यदि ये भी समझ में आ जाए कि इस जीवन का क्या मूल्य है यह अनुभूति, तो इस संसार में शांति हो जाएगी, लड़ाई और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और जो अध्यात्म में पहले से है वो भी समझ जाए, जो ज्ञान में है, इस ब्राह्मण जीवन का क्या महत्व है। आज का काल काम कल पर नहीं छोड़ेंगे, स्टीमर डूब जाएगा, सुबह की वाणी, प्लेन गिर पड़ेगा, पता नहीं कब। इस ब्राह्मण जीवन का भी जिन्होंने महत्व नहीं समझा, उनके जीवन में भी द्वंद होगा, द्वंद की अवस्था होगी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये करूं कि वो करूं। यदि इस जीवन के महत्व को नहीं जाना है, कौन सा ये जीवन है, कैसा ये जीवन है, इस जीवन में हमें कौन मिला जो तुमने सोचा भी नहीं था कभी, वो तुमने आंखों से देखा है। ऐसी द्वंद की अवस्था रहेगी नहीं। तो यदि इस ब्राह्मण जीवन का भी महत्व नहीं समझाता, बाबा रियलाइजेशन के तलों की बात कर रहे हैं। एक तो संसार के लिए है कि वहां द्वंद हो रहे, मानव जीवन का महत्व समझ ले तो द्वंद समाप्त तो हो जाए, स्नेह ही धर्म है ये पता चल जाए। और यदि ब्राह्मण जीवन की का मूल्य हमें नहीं है, स्पिरिचुअल स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसी स्प्लिट पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व, ये करूं कि वो करूं, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट की तरह हमारी स्थिति होगी। ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं, ये करना है कि नहीं करना है, ये पहला तल है रियलाइजेशन का। दूसरा तल रियलाइजेशन का, मानवता का आधार क्या है। मानव का आधार क्या है, मानव जीवन का आधार क्या है, और आधार है मैं आत्मा हूं। केवल इतना भी समझ में आ जाए तो शांति की स्थापना हो जाएगी संसार में। हर एक को ये समझ में आ जाए कि मैं नच भांति भूत संघम, ये जो देह है, ये भौतिक व्यक्तित्व मेरा व्यक्तित्व नहीं है, मेरा जो व्यक्तित्व है वह अलौकिक है, वह आत्मिक है, वह मेरा सच्चा स्वरूप है। ये दो तल रियलाइजेशन के। इसके भी आगे एक तीसरा भी तल है अनुभूति का, और वो कौन सा है, सबने मुरली सुनी और पढ़ी भी है कल, कौन सा तल है वो तीसरा, कौन सी आत्मा हूं मैं, श्रेष्ठते श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूं। यदि ये पता चल जाए तो सारी निर्बलता विलीन हो जाए, आत्मा शक्तिशाली बन जाए, बल आ जाएगा आत्मा में, पावर आ जाएगी आत्मा में। ऐसा फिर कुछ भी नहीं होगा कि वो जो चाहे वो न कर पाए। स्मरण की आवश्यकता है, अवेयरनेस माइंडफुलनेस की आवश्यकता है। पहला तल है इस जीवन का महत्व, दूसरा तल है मैं कौन, मैं कौन हूं, क्या हमने जान लिया मैं कौन हूं, या सूचनाएं प्राप्त की है खाली, मैं आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं, परम धाम मेरा घर है, शिव बाबा मेरा पिता है, सूचनाएं बहुत है, इंफॉर्मेशन, परंतु क्या ज्ञान है, क्या सूचना और ज्ञान में कोई अंतर है। कोर्स तो हमने बहुत कराए, सबको बताया तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तत्वमसी, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, परम धाम तुम्हारा घर है, अब घर वापस जाना है। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोफेनहावर, नास्तिक था बहुत, जीवन में उल्लेख, एक दिन सुबह सुबह 3 बजे किसी बगीचे में प्रविष्ट हुआ और वहां पर अपने आप से बातें करने लगा, बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, क्या बोल रहा था उसे भी पता नहीं। तो वहां का जो माली था वो आया, उसने आवाज सुनी, उसकी नींद टूटी और बाहर आया एक लालटेन और एक लकड़ी लेकर हाथ में, देखने के लिए कि कौन है ये। तो देखा कि ये कौन पागल व्यक्ति है जो खुद से बात कर रहा है, और वो व्यक्ति उससे पूछता है, वो माली शोफेनहावर से पूछता है, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कहां से आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए आए हो, हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, व्हाट डू यू वांट, आर्थर शोपेनहावर कहते हैं यही तो मैं जानना चाहता हूं, यही तो मेरे जीवन के प्रश्न है, मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, मुझे क्या चाहिए और मुझे करना क्या है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं बचपन से और मुझे अब तक पता नहीं कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है। ये केवल उसका ही प्रश्न नहीं था, ये हमारा भी प्रश्न है। भगवान को पा लिया, भगवान को इन आंखों से देखा, उसके यज्ञ की वेदी पर जीवन को अर्पित कर दिया, परंतु क्या ये प्रश्न अब भी खड़ा नहीं है कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना है, लक्ष्य क्या है, कहीं लक्ष्य तो नहीं भूल गया। तो अनुभूति के तीन तलों में पहला तल है जीवन का महत्व, दूसरा तल है स्वयं की पहचान, और तीसरा तल है केवल मैं आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा ये जानकर भी निर्बल है, इसके लिए उसे समान की आवश्यकता है कि तुम कौन सी आत्मा हो। तो मुरली की शुरुआत ही बाबा ने समान की बौछार की है, कौन से पुष्पों की वर्षा की है, अति स्नेह के सुनहरे पुष्पों की वर्षा की है, गीत गाए है, माला पहनाई है संदेश में, एक एक समान, एक एक सुनहरा पुष्प है, गोल्डन फ्लावर। ये तीसरा तल है अनुभूति का, स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, एक शब्द में परिभाषा दी थी, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अर्थात अनुभूति। एक व्यक्ति को धार्मिक तभी कहा जाएगा जब उसने अनुभव किया है, तब नहीं जब उसने संन्यास लिया है, तब नहीं जब उसने विशिष्ट रंग के कपड़े पहने हैं और विशिष्ट जीवन जीता है, या फला फला धर्म को स्वीकारा है, या किसी का शिष्य बना है, या फिर किसी शास्त्र को पढ़ा है। ये सबसे कोई धार्मिक नहीं होता, धर्म अर्थात अनुभूति, जिसने अनुभव किया है वही धार्मिक है। तो बाबा ने सुनहरे, अति सुनहरे पुष्पों की वर्षा की है। तो वो कौन कौन से समान थे, कौन कौन से पुष्प थे जिनसे बाबा ने हमारे ऊपर वर्षा की है, कौन से पुष्प थे, तुम कौन हो, तुम सेवाधारी हो, सेवा के निमित्त आत्माएं हो, तुम कौन हो, तुम सहयोगी आत्मा हो, सहजयोगी आत्मा हो, राइट हैंड हो, तुम मस्तक मणि हो, हृदय मणि हो, संतुष्ट मणि हो, बाप के ताज के मणि हो, आधार मूर्त हो, विश्व परिवर्तन के इस कार्य में उद्धार मूर्त हो, एक दो से श्रेष्ठ हो। इतने सारे समान दिए, बाप के दिल का आधार हो, कितने ऊंचे ऊंचे शब्द है, कितने ऊंचे ऊंचे समान है, इसकी अनुभूति करना तीसरा तल है अनुभूति का, द थर्ड प्लेटफॉर्म ऑफ रियलाइजेशन, हायर कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा तो हूं परंतु कौन सी। भगवान कह रहे तुम हृदय मणि हो, कभी सुना ये समान, हृदय मणि, मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, मुकुट मणि, ज्ञान सूर्य हो, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ भावना की किरणें फैलाने वाले, एक एक समान पर कार्य करना है, एक समान लेना, मैं भगवान का हृदय मणि हूं, और इस पे लिखना है फिर रोज, क्यों हृदय मणि हूं तो क्या, हृदय मणि हूँ तो मेरी चमक कैसी है, क्यों ऐसा कहा, इसका अर्थ क्या है। चिंतन, मनन, अध्ययन, ये सारे समान। इस मुरली में बाबा के तीन रूप है। पहला रूप है उसका बाप का रूप, जहाँ वो समान दे रहा है बहुत सारे और गीत गा रहा है। कौन सा गीत है उसका? एक ही गीत है उसका, तुम्हारे अनेक गीत है। बाप की महिमा में हर दिन नए नए गीत निकलते हैं। पहले तो है ही, पर अभी हर दिन नए नए गीत, और हर एक उसमें से अपने अपने गीत गाता है, परंतु बाबा का तो एकच गीत है, ऑल टाइम फेवरेट। गीत की शुरुआत भी एक ही शब्द से, गीत का अंत भी एक ही शब्द से, ज्यादा शब्द भी नहीं है गीत में, केवल कौन सा गीत है उसका। परंतु उसका एक और तुम्हारे हजार, पलड़ा किसका भारी है। वाह बच्चे वाह, वाह वाह का उसका गीत है। वाह श्रेष्ठ आत्माएं, वाह वाह प्यारी आत्माएं, वाह तुम मेरे वाह वाह बच्चे हो, उसका एक ही गीत है। भक्ति में तुमने भगवान के लिए गीत गाए थे, गाते गीत जिसके, अब वो हमारे गाए। इन आंखों से जो तुमने कभी ना देखा होगा, कभी सोचा ना था भगवान मिलेंगे, जो कभी नहीं सोचा था वो तुम आंखों से देख रहे हो इस समय। सागर के पास आए हो, केवल गागर भर के नहीं जाना, क्या करके जाना फिर क्या करके जाना मास्टर? सागर बन के जाना। खान के पास आए हो तो क्या करके न जाना? सागर के खान के पास आए हो तो क्या करके न जाना? दो मुट्ठी भर के नहीं जाना, केवल पाश्चात्य जगत में बहुत बड़ा दार्शनिक कभी हुआ था एरिस्टोटल, अरस्तु जो शिष्य था सुकरात का, प्लेटो का, प्लेटो शिष्य था सुकरात का, एरिस्टोटल सिकंदर का वो टीचर था एरिस्टोटल। जीवन में उसके वर्णन है, एक बार सुबह सुबह एक समुद्र तट पर वो घूम रहा था और उसने देखा कि एक व्यक्ति चम्मच में पानी भर रहा है और एक गड्ढा किया है, उस गड्ढे में पानी डाल रहा है। वो उससे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति करता है, कहता है, मैं इस समुद्र को खाली करने का प्रयत्न कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एम्प्टी द ओशन। अरस्तु कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, समुद्र को खाली करने चले हो और वो भी चम्मच से, और वो भी इस गड्ढे में डाल रहे हो जो तुमने हाथ से बनाया है रेती पर। वो कहता है, क्यों, मैं तुमको भी जानता हूं, तुम भी तो परम सत्य को पाने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तो है इतनी, तुम्हारा मनुष्य का मन, और परम सत्य भी तो ओशन है, समुद्र है, तुम भी तो वही कर रहे हो, तो मैं पागल हुआ या तुम? उस परम सत्य को क्या तुम अपनी बुद्धि से जान पाओगे? क्या उस परम सत्य का अवतरण तुम्हारी छोटी सी बुद्धि रूपी इस गड्ढे में हो सकेगा? अरस्तु सोचने लगता है, बात तो सही है, पागल तो मैं भी हूं, मैं भी तो यही कर रहा हूं, क्या वास्तव में उस सत्य को पाया जा सकता है? यहां वो परम सत्य स्वयं अवतरित हुआ है और वो हमसे कह रहा है, क्या गागर भर के नहीं जाना, खाली क्या बनकर जाना, स्वयं ही सागर बन जाना, मास्टर सागर बनकर जाना। खान के पास आए हो, सारी की सारी खान लेकर जाना, हप करने वाली तुम चिड़िया आए हो सागर को, साकार मुरलियों में आया है। पहला रूप बाबा का, बाप का, जिसमें वो प्यार कर रहा है, फूलों की वर्षा कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है और समान दे रहा है, महिमा कर रहा है। किसकी महिमा बाबा ज्यादा करते हैं वैसे आज की मुरली के हिसाब से, वो आप खुद ही पढ़ लेना। बहुत महिमा कर रहा है इस मुरली में, तुम स्नेही हो, तुम सहयोगी हो, तुम सहज योगी हो, तुम राइट हैंड हो, तुम मस्तक मणि हो, हृदय मणि हो, तुम नैनों के नूर हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। बाबा ने राज खोल दिया है सुबह की मुरली में, इतनी महिमा। तो पहला रूप है उसका बाप का रूप, जिसमें वो महिमा कर रहा है, गीत गा रहा है, महिमा के गीत। उसका दूसरा रूप है सद्गुरु का, जिसमें वो अनुभूति क्या होती है वो बता रहा है। तुमने भाषण बहुत कर लिए, परंतु बाप तुम्हें उन भाषणों का सार समझाते हैं, रियलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। तीन तल उस रियलाइजेशन की, ये उसका दूसरा रूप। उसका तीसरा रूप है टीचर का, और टीचर होमवर्क देता है, और इस मुरली में भी बाबा ने चार होमवर्क दिए हैं। कौन से, कौन बताएगा? कौन से? पहला, मुझे याद करो, रूटीन का होमवर्क है। पहला होमवर्क, मुझे याद करो। दूसरा उसके आगे का है, अगर पहला होमवर्क नहीं किया तो दूसरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा है दूसरों को बाप की याद दिलाओ। जो स्वयं ही याद नहीं कर रहा है वो दूसरों को कैसे याद दिला सकता है? जो इसने स्वयं ही अनुभव नहीं किया वो दूसरों को कैसे कर सकता है, कह सकता है कि तुम भी अनुभव करो? क्या परमात्मा प्रेम इतनी सस्ती वस्तु है कि किसी दूसरों को भी ऐसे ही थमा दी जाए? जब तक स्वयं हृदय गदगद नहीं हुआ है, जब तक स्वयं इन आंखों से अश्रु धारा नहीं बही है उस प्रेम में, जब तक व्यक्ति स्वयं ओत प्रोत नहीं है उस प्रभु प्रेम में, कैसे दूसरों को अनुभव करा सकता है? क्या ऐसा ऐश्वर्य प्रेम से मैंने अपने आप को भरा है? क्या वो प्रेम की अविरल धारा मेरे हृदय में बह रही है? सभी टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स बैठी है, क्या हमने भगवान के प्यार से स्वयं को ऐसा रंग लिया है? क्या उसकी मुरली को हमने जीवन में ऐसी धारण कर ली है कि रग रग में वही बज रही है? तो ही शायद हम अधिकारी है उसको दूसरों को सुनाने के। क्या उसको हमने वैसा ही समझा जैसे वो सुनाई गई है? तो ही हम अधिकारी है दूसरों को सुनाने के। पहला, मुझे याद करो, बाप की याद में रहो। दूसरा, दूसरों को याद दिलाओ। तीसरा, चरित्र यादगार बन जाए हर सेकंड, तुम्हारे कर्म यादगार बन जाए। विश्व के इतिहास की तरफ एक नजर दौड़ाओ तो संसार में इतने सारे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवन कहानियां हैं, आत्मचरित्र है, एक एक चरित्र गायन योग्य जैसे बन गए हैं। यज्ञ को ही देखो, ब्रह्मा से लेकर तो सारी दादियां, जीवन ही चरित्र है। बाबा ने कहा, यादगार बना दो हर कर्म को, हर चरित्र को। हम जो भी करें वो क्या बन जाए? यादगार। हम जो भी बोले वो क्या बन जाए? यादगार। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, जो हम बोले वो क्या हो? अर्णव हो, अमृत हो। चौथा, हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल जीवन के आईने में, अपने प्रैक्टिकल जीवन के आईने में क्या कराओ? साक्षात्कार किसका? स्व का और बाप का। आत्माओं को ये लगे केवल हमको देखकर कि जीवन ऐसा होना चाहिए, हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा, केवल देखा उन्होंने। जीवन ही आईना है, हम कुछ कहे वो कुछ सुने, हम कुछ सुनाए वो उसे समझे ना समझे, क्या पता। हमारी भाषा, हमारे बोल उनके हृदय में प्रविष्ट हो ना हो, क्या पता। परंतु हम कुछ भी ना बोले और केवल कोई देख ले तो उसके मन में संकल्प उत्पन्न हो सकता है कि हाँ, इनको देखकर कैसे पवित्र भाव तरंगे उत्पन्न हो रही है। और जो इस झाड़ के होंगे वो तो जरूर आएंगे। अनुभव कराना, उसके लिए अनुभव होना स्वयं को वो अति आवश्यक है। और उसके लिए एक चीज जो चाहिए वो है संवेदनशीलता, अपनी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी को बढ़ाना है। और उसके लिए गहन मौन की आवश्यकता है और एकांत की आवश्यकता है। विदेश में कई सारे प्रयोग किए गए। एक प्रयोग ऐसा था कि कुछ वैज्ञानिक समुद्र तट पर चले गए और वहां पर जो पत्थर थे उन पत्थरों को हाथ में लिया, आंखें बंद कर एक एक पत्थर को लेते थे और अनुभव करने का प्रयत्न करते थे क्या अनुभव होता है। केवल पत्थरों को कभी गालों से लगाते थे, क्या अनुभव होता है। आंख बंद कर चिड़ियों की आवाज सुनते, क्या अनुभव होता है। झरनों की आवाज सुनते, कलकल निनाद करते वो झरने, क्या अनुभव होता है। टू इंक्रीज रिसेप्टिविटी, जिसको बाबा कहते हैं ना, बाप की टचिंग तुमको मिलेगी। परंतु चित्त इतना शुद्ध, निर्मल, शांत, एकांत, एकाग्र हो जाए तो होगा। यह स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी हमारे हृदय में, हमारे शरीर में भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हम चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर हो रहा है। एक वैज्ञानिक ने ऐसा प्रयोग किया था कि चार मरीजों को उसने लिया, 12 पेशेंट्स, एक साइकोलॉजिस्ट ने, और उनका यूरिन सैंपल टेस्ट किया, पेशाब की जांच की 12 लोगों की, और उसके बाद में आधा आधा घंटे के लिए उनको एक एक फिल्म दिखाई। किसी को एक ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें बहुत खौफनाक है, डर है जिसमें, किसी को कॉमेडी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, किसी को बहुत खुशी वाली, किसी को बहुत हिंसा वाली, किसी को विकार। और आधा घंटा के बाद उसने फिर से उन सब की जो यूरिन जांच की थी, पहले की फिर बाद में की, और देखा कि उसमें तो बहुत सारा रासायनिक अंतर है। हम जो कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे देह में भी कुछ कुछ होता है उससे। कोई यदि कोई उपन्यास ही पढ़े, जासूसी, उत्तेजना, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वो आवेश, हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, वो भी सब कहीं ना कहीं अनुभूति बनती है, जाती है। इसलिए शरीर इतना सूक्ष्म तल पर कार्य करता है, मन इतने सूक्ष्म तल पर कार्य करता है, हमें पता नहीं चलता है ये क्यों हो गया। परंतु शायद दिन में कहीं खड़े हो गए होंगे और कुछ देख लिया, कोई झगड़ा चल रहा है रास्ते पर, उसको हमने देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, और वो सूक्ष्म में, चेतना में अंकित हो गया। और फिर अचानक से याद आता है। इसलिए क्या अंकित करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय हमें करना है। इसके लिए संवेदनशीलता जो बढ़ानी है वो स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी को बढ़ानी है। अपने आप को जितना हो सके अध्यात्म से के बीच में रखे, मन में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मिलियू जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और वो सच्ची अनुभूति हो, झूठी अनुभूति ना। अपने आप को छलना नहीं है कि मैं अनुभव कर रहा हूं, जब मुरली बाबा कह रहे हैं कि तुमने जितने भाषण किए उसका सार मैं सुना रहा हूं और वो सार है रियलाइजेशन, तो हमें लक्ष्य रखना है क्या मैं रियलाइज कर रहा हूं या केवल ही अमृत वेला, उठ के अमृत वेला फिर मुरली सुनाना सुनना और दिन भर में सेवा, शाम को योग, मुरली पढ़ना पढ़ाना, इसमें अनुभव है या खो गया है कहीं? अनुभव तो बहुत गहरी बात है, कहीं वो झूठा अनुभव तो नहीं है? फोनी रियलाइजेशन, अंग्रेजी में एक शब्द है फोनी, PHONY, फोनी अर्थात झूठा। वो शब्द आया है टेलीफोन से, जब टेलीफोन की इजाद हुई थी, इन्वेंशन नया नया, तब लोग जो बात करते थे अपनी एक दूसरी आवाज भी आती थी उसमें, झूठी आवाज शुरुआत में, तब से वो शब्द निकला था फोनी अर्थात झूठा। ऐसा कहीं फोनी रियलाइजेशन तो नहीं है और अपने आप को ही छलते जा रहे हैं हम? डीप रियलाइजेशन, गहरा अनुभव हो। तो ये तीसरा रूप था बाबा का, टीचर का। उसके बाद जैसे कहा कि यहां पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 40 देशों से, 3000 से भी ज्यादा उसमें डेलीगेट्स प्रतिनिधि थे। 14 तारीख को वो, 9 तारीख को चालू हुई थी इस कॉन्फ्रेंस के विषय में हम कुछ पढ़ रहे थे। ज्ञानामृत मार्च 1983 में इसके विषय में वर्णन है। उस ज्ञानामृत की कीमत है 1.25 रुपया। लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी मैदान में क्यों नहीं आती? जगदीश भाई ने लिखा है कि हम लोग पहले तो व्यक्तिगत सेवाएं करते थे, शुरुआत में 1-to-1 कोर्स कराना, फिर भाषणों की सेवा चालू हुई, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में प्रदर्शनी लगी, उसके बाद में प्रोजेक्टर्स आए, उसके बाद में मेले हुए, परंतु लोग फिर भी कहते थे मैदान में कब आएगी ब्रह्मा कुमारी, विश्व के मैदान में। ये एक यज्ञ के इतिहास का एक ऐसा पल है, ऐतिहासिक पल, जहां से यहां जो भी हुआ उस कॉन्फ्रेंस में, इतने सारे डेलीगेट्स आए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, एक एक ने जो जो कहा वो इतना मूल्यवान था, यहां तक कि रॉबर्ट मूलर, जिसके बारे में मुरली में आया, जिनको बाबा ने कहा करते जाओ, दिल शिकस्त नहीं होना, बाप साथ है, अगर अकेला महसूस करो तो समझना बाबा साथ है, तो फिर अकेलापन नहीं रहेगा, हिम्मतवान बनो, संकल्प किया है स्वप्न तुम्हारे पूरे होंगे, जैसे उसके बारे में कहा कि एक ही स्वप्न था बस, शांति शांति शांति, और प्लानिंग बुद्धि थी। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने 14 से भी ज्यादा किताबें, मल्टीलिंग्वल स्पीकर, अनेक भाषाओं में किताबें लिखी इसी टॉपिक पर, हैप्पीनेस पीस। और यहां पर जगदीश भाई ने एक बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जब बाबा ने उनसे कहा कि तुम कर सकते हो, उसको इतना नशा चढ़ गया कि वो कॉन्फ्रेंस हुई 14 तारीख को पूरी हुई, 14 तारीख को सबको बाबा पहाड़ी पर लेके गए, वहां पर योग हुआ, 15 तारीख को बाबा आए, बाबा ने व्यक्तिगत मुलाकात की, तो उस डॉक्टर रॉबर्ट को इतना नशा चढ़ गया कि दादी जानकी को बार बार वो कहता था बाबा ने मुझे कहा है कि तुम कर सकते हो, बाबा ने कहा है तुम कर सकते हो, तुम करो, बस एक ही। और उसने अपने अनुभव में भी कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का, इवन दूसरे जो डॉक्टर थे वहां पर रोड्रिगो, उसने भी कहा कि मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये तो पीस यूनिवर्सिटी है। और ये जो डॉक्टर रॉबर्ट मुलर है, ये एक पहला, इसको फिलोसोफर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, जितना उसने कार्य किया धर्म को, उसने रिलीजन को, न्यू एज मूवमेंट, उसमें ब्रह्मा कुमारी जाता है, न्यू एज मूवमेंट को यूएन में स्थान दिया, ऐसा ये व्यक्तित्व था। तो बाबा ने उनसे बहुत सारी बातें कही, कहा कि तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाटधारी हो, बाप तुम्हारे साथ है, अब तुम्हारे प्लानिंग में स्पिरिचुअल प्लान ऐड हो गया है, इसके लिए नहीं समझना तुम अकेले हो, हमेशा बाबा तुम्हारे साथ है। कितनी बढ़िया और अच्छी बात उसको कह दी बाबा ने, निश्चय बुद्धि विजयंती, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। इस मुरली में ये भी कहा कि बाबा एक एक को नाम सहित कह रहा है, तो ये जो जो बातें हैं वो केवल एक व्यक्ति को नहीं है, सभी को, जो वहां थे केवल उनको नहीं, जो आने वाले थे, जो हम, उनके लिए भी ये बातें थी, सबके लिए। तो बाबा ने यहाँ पे अंकल आंटी से भी थोड़ी बातें की, और अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा उसमें एक योग का प्रयोग करना है। संदेश में बाबा ने कहा, गुलजार दादी का जो संदेश है, दादी ने कहा बाबा की मीठी रूहानी दृष्टि से चार चीजों का अनुभव हुआ। कौन सी? स्नेह, प्रेम, आनंद और शांति, और शांति और सुख, शांति और आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति। ये एक चिंतन का विषय है, जो इस पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, दृष्टि ऑफ गॉड, भगवान की दृष्टि। दादी ने कहा कि मैं वतन में गई, रूहानी दृष्टि बाबा ने दी, उसमें से ये चार चीजें जैसे आंखों से आ रही थी, और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं भरती जा रही हूं। जब भी बाबा के पास जाए, चलते फिरते चित्र दिख जाए, यह अनुभव करना कि वह आंखें, चाहे अव्यक्त बाप दादा की वह काली काली और गीली गीली आंखें, उसमें से प्रेम की किरणें आ रही है। और इस मुरली में आगे भी एक दृश्य है, उसकी हम ट्रैफिक कंट्रोल के बाद चर्चा करेंगे, कि प्रकाश शब्द में बदल रहा है, प्रकाश आ रहा है, लाइट, लाइट एनर्जी, वर्बल एनर्जी, शाब्दिक एनर्जी, वाचिक एनर्जी, वर्बल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अलग अलग रंग की किरणें आ रही है, और वो शब्द, वो रंग शब्द में परिवर्तन हो रहे है, वो भी एक योग का प्रयोग है। तो अभी यह अनुभव करना है, सभी बैठेंगे अलर्ट होकर, कि बाबा मुझे देख रहे हैं, और उस दृष्टि से प्रेम आ रहा है और मुझ में समा रहा है, आनंद आ रहा है मुझ में समा रहा है, स्नेह शांति आ रही है और शक्ति आ रही है, और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। दूसरा दृश्य, वतन में एक प्रतिमा है जिसमें हीरे हैं, सफेद रंग का प्रकाश आता है, और वो प्रकाश किसमें रूपांतरित हो जाता है? शांति में। हरे रंग का प्रकाश आता है और किसमें रूपांतरित हो जाता है? उमंग में। नीला, लाइट ब्लू रंग का प्रकाश आता है और किसमें रूपांतरित होता है? उत्साह में। और गोल्डन, सुनहरा प्रकाश आता है और किसमें रूपांतरित हो जाता है? सेवा में। प्रकाश शब्द बन रहे हैं। इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि यदि हमें कहीं जाना है और कुछ बोलना है, चाहे मुरली सुनाना, चाहे भाषण देना, या कुछ भी किसी को समझाना, या किसी के साथ कुछ बात करना, बाबा के सामने बैठना, प्रकाश ले लेना, वो अपने आप शब्द बन जाएंगे। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्बल एनर्जी में। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उससे पूछते हैं कि हम क्या करें, कैसे आपका संदेश दे, हमें बोलना नहीं आता, वो उनको दृष्टि देता है सबको, और कहता है जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर। क्या बोलना है वो तुम्हें उस समय दिया जाएगा। मैं ये नहीं बताऊंगा ये बोलो वो बोलो ऐसा करो वैसा करो, केवल जाओ, वो तुम्हें दिया जाएगा। दृष्टिपात, बाबा से दृष्टि ले लेना, और ऐसे समझना कि ये लाइट जो आ रही है ये शब्द बन गए, और वो शब्द संकल्पों को जन्म देंगे, और वो शब्द फिर वाचा में आएंगे। तो ये हमें नहीं सोचना है बोलना क्या है और करना क्या है, अपने आप कार्य होगा। कितना सुंदर प्रयोग है ये, प्रकाश शब्द बन रहे हैं, किरणें शब्द बन रहे हैं, ये दूसरी बात। तीसरी, यहां बाबा ने दो सीट दी है गिफ्ट में और एक हार पहनाया है। जब भी कुछ लिखते हैं, बाबा मीडिया वालों से प्रेस वालों से बात कर रहे हैं, जगदीश भाई मुख्य थे तब कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे लोग आए थे, तीनों ही जो हमारी पत्रिकाएं हैं उसके प्रमुख संपादक के रूप में जगदीश भाई जी थे, प्यूरिटी, ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल। बाबा उनको कह रहे हैं, कलमधारी जो है उनको बाबा क्या देते हैं, कमल। इस कमलासन पर बैठकर लिखो तो संसार के तमोप्रधान वाइब्रेशन से दूर रहेंगे, परमपिता के प्यारे रहेंगे, उसमें व्यवहार भी होगा और परमार्थ भी होगा। अब ये कितना अच्छा प्रयोग है कि जब भी हम कुछ लिखने बैठे तो कहां बैठना है, कमलासन पर। वो लिखना मोबाइल में मैसेज टाइप करने से लेकर, ईमेल करने से लेकर, खत लिखने से लेकर, आर्टिकल लिखने से लेकर, खत लिखने से लेकर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि झगड़े क्यों होते हैं, रॉन्ग व्हाट्सएप, यहां से ऐसा मैसेज भेज देते हैं कि उससे झगड़ा चालू। कुछ भी टाइप किया जा रहा है, टाइप करना भी लिखना है, कुछ भी टाइप किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, बाबा कह रहे किस पे बैठ के लिखो, कमल आसन पर बैठो, उसके बाद ही लिखना, तो वो गलत नहीं होगा। फिर तमोप्रधान वाइब्रेशन उसको टच नहीं करेंगे, उस लिखन, उस राइटिंग को। नहीं तो कितने संबंध आज बिगड़ रहे हैं मैसेजेस के कारण। मैसेजेस भी नहीं, केवल वो इमोजीज जो होते ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो रोने वाला हंसने वाला, उसको इमोजीज कहते। उसने कुछ कह दिया और हमने अगर ऐसा भेज दिया बिना कुछ कहे तो गया, संबंध खराब। बिना कुछ कहे केवल ऐसे ऐसे, या कुछ रोता हुआ या गुस्से वाला लाल वाला, जो भी टाइप करे, जो भी बटन प्रेस करे कंप्यूटर का, मोबाइल का, कहीं भी, कमल आसन पर बैठकर, पहला आसन। दूसरा हंस आसन, वीआईपी से बाबा बात कर रहे, इनके मुख में शक्ति होती है शब्दों में। जब भी कोई निर्णय लेना है हंस आसन पर बैठकर निर्णय लो, तो वो निर्णय में विशेषता आ जाएगी, यथार्थ होगा, दूसरों को भी स्नेह और शक्ति मिलेगी। जीवन का निर्णय, जीवन में परिस्थितियों में बार बार आज कहा ना, परिस्थितियां टाइट होगी, समस्याएं टाइट होगी, वरदान में बोला है बैलेंस चाहिए कर्म का योग का। तो जब निर्णय लेना हो तब इस आसन पर बैठ जाओ, तब निर्णय लो। हंस आसन, हंस क्या करता है, ये परखता है कि क्या कार्य का है, क्या कार्य का नहीं है, सत्य क्या, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, ये जान लेना। शीर क्या, नीर क्या, ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा, इस आसन पर बैठकर टेक द डिसीजन। तीसरा, सेवाधारियों से बाबा मिल रहे, समर्पित सेवाधारियों से, उनको एक हार पहनाई है, सदा खुश रहो, गुणों की हार, गुणमूर्त बच्चों को खुश नसीब रहो, खुशी का खजाना, खुशी का वरदान। पिछले सीजन की सेकंड लास्ट मुरली, सात मुरलियां चली थी, उसमें छठवें नंबर की जो मुरली थी वो थी, बाबा ने कहा खुशी का महल बन जाओ, क्या बन जाओ, पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का महल। तो ये संक्षिप्त में सारी मुरली थी। बाबा ने शुरुआत किए बाप के रूप में बहुत सारे सम्मान, सदगुरु के रूप में रियलाइजेशन क्या है वो बताया, टीचर के रूप में कुछ होमवर्क दिए, फिर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके विषय में कुछ बताया, और वो कितनी उसकी उपलब्धियां क्या थी, उसके 10 नियम, बहुत सारे नियम बने कॉन्फ्रेंस के बाद, वो एक चार्टर बना, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। जो उसके बारे में जानना चाहते हैं साहित्य में पढ़ सकते हैं, जो संस्था का लिटरेचर है उसमें, तो उसमें कल्याण जी, आनंद जी मुंबई से खास, वो तब शायद मधुरवाणी ग्रुप नहीं था, या था हमें नहीं पता तो वो उनको बुलाया गया था, उन्होंने वो गीत वगैरह प्रस्तुत किए थे। पहला सेशन 9 तारीख का, 11 तारीख का जयंती बहन ने संचालन किया था, उसमें भी बहुत सारे स्पीकर्स थे। तो इस तरह से बहुत सुंदर उसकी उपलब्धियां क्या है और वो सब क्या है उसका बहुत विस्तार है। तो इस मुरली से जो आपने अभी सुना उसमें से मेरे काम का क्या क्या है, मेरे लिए क्या क्या मुझे करना है, होमवर्क क्या क्या है, वो निकालकर उस पर चिंतन करेंगे। ओम शांति।